हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देखते हैं ईवा टीवी चैनल पे। आज हमारे सामने जो एक हस्ती है उनका इंट्रोडक्शन मैं कुछ ऐसा करना चाहूँगा, या जब इनसे मेरी पहली बार बात हुई या इस एपिसोड से पहले जब मेरी इनसे बात हुई तो हमने ये डिसाइड किया था कि आज एंटरप्रेन्योर्स के पास एक ऐसी क्या चीज़ है जिसको अगर वो अडेप्ट कर लें, जिसको अगर वो बिठा लें, जिसको अगर वो प्रैक्टिस कर लें तो उनका बिजनेस मल्टीपल फोल्ड बढ़ जाएगा। वो अपने ऑडियंसेस तक बहुत आराम से और बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। और वो ये है कि अपने एक्सपीरियंस को या अपने सपने को आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एंड वो कम्युनिकेशन हो सकता है स्टोरी टेलिंग की वजह से या स्टोरी टेलिंग के तरीके से, कहानी के तरीके से। मैंने, आपने, हम सब ने अपने नानी दादी चाची मामी सबसे बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं या जिस तरह की कहानी हम आज सीखने वाले हैं वो हमारे बिजनेस को मल्टीपल फोल्ड बढ़ा देगी। आइए मिलते हैं रुपेश से। तो रुपेश सावंत एक किसान है प्रीडोमिनेंटली, एंड ही इज़ अ बिजनेसमैन एज वेल। ही रन्स अ कंपनी कॉल्ड सुपरलेखा, एंड ही इज़ अ टीचर ऑल्सो, एंड ही सेज दैट ही इज़ अ स्टूडेंट ऑल्सो बिकॉज ही कीप्स लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल। सो इतनी सारी डिफरेंसेस के साथ में आप कैसे मैनेज करते हैं रुपेश?
प्यार और सोसाइटी को कुछ वापस देने की जो इच्छा है उसी से चला रहे हैं।
ग्रेट, ऑसम। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज जो टॉपिक है वो है स्टोरी टेलिंग का। सो आप जानते हैं कि जो कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं, जो कुछ भी हमारे जो भी बाइंग डिसीजंस होते हैं या जो भी सेलिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, चाहे आप कोई ब्रांड बेच रहे हैं या चाहे आप कोई ब्रांड खरीद रहे हैं, वो सब के सब स्टोरी टेलिंग की वजह से ही होते हैं। क्योंकि आप कुछ सुनते हैं, किसी चीज़ की इमेज अपने दिमाग में बनाते हैं और उसके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि अच्छा है या बुरा है, मेरे लायक है या मेरे लायक नहीं है, उस पर आप अपने डिसीजंस लेते हैं। तो आज जानेंगे रुपेश से कि स्टोरी टेलिंग का क्या महत्व है एक स्टार्टअप में या एक SMEs में।
बचपन से मैंने सिर्फ कहानियाँ सुनी है और कहानियों में ही मुझे पता चला कि ये ज़िंदगी कैसे चलती है।
एब्सोल्युटली,
मुझे मालूम नहीं मुझे यहाँ क्या बात करना है, बट मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि कहानियों में लोग क्या सुन सकते हैं और क्या पा सकते हैं, ये मुझे आज बताना है। जब मैंने मेरा पहला क्लास लिया, मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रिंटिंग सिखाता हूँ, मुझे दो चीज़ आती है सिर्फ, मुझे एक तो खेती आती है और मुझे प्रिंटिंग आता है। अब खेती सिखाने के लिए मैं मेरे गांव जाता हूं, बट बम्बई में रहता हूं इसलिए यहां पे प्रिंटिंग सिखाता हूं। यहां पे किसी को खेती सिखाने नहीं सिखा सकता क्योंकि फिर वो टेरेस गार्डनिंग के तरफ जाते हैं, एंड टेरेस गार्डनिंग इज नॉट खेती।
करेक्ट,
इट्स अ हॉबी, वो आपकी टाइम पास है।
राइट,
तो जब मैं यहां पे प्रिंटिंग सिखाता हूं, और प्रिंटिंग एक ऐसा विषय है जहाँ पे इतनी टेक्निकलिटीज़ है, और आज अगर मैं टेक्निकलिटीज़ के बारे में और उससे जुड़े मेरे कंपनी की अनुभव के बारे में बात करूँ तो हमारे पास कम से कम 150 साल का अनुभव रहेगा। अब मुझे 150 साल का अनुभव, जिसमें से मेरा अनुभव 35 साल का है, मैं मेरे पिताजी को प्रिंटिंग के हमारे क्षेत्र में, मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था तभी ज्वाइन हुआ हूँ।
ओके,
तो मेरे बालों पे मत जाइए, मैं काफ़ी यंग हूँ। मेरे 4 मामा हैं मेरे साथ, पिताजी है, मैं हूँ, मेरी पत्नी है, तो ये सबका पूरा 150 साल मुझे अगर 3 घंटा और उसमें 5 सेशन, सो ऑलमोस्ट 15 घंटे में सिखाना है तो मुझे उन्हें स्टोरी ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं और बच्चों को क्या अच्छा लगता है?
कहानियाँ और चॉकलेट।
और चॉकलेट, चॉकलेट भी देता हूँ भाई।
गुड।
सो जब उनको आप कुछ टेक्निकल बात कहानी के द्वारे में बताते हो तो दे विल, वो याद ऐसे रखते हैं, वो कहानी वाली जो एक्सपीरियंस थी वो बराबर है। और फिर उनको मैं सिर्फ यह बताते जाता हूँ कि आप जब भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब भी कुछ भी जिंदगी में करते हो आप उसे याद कैसे रखते हो? आप उसे कहानी के द्वारा याद रखते हो और आप उसको एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा याद रखते हो। आपको अनुभव कैसे आता है? आपको अनुभव कहानियों से ही आता है। आपको बचपन में बताया जाता है कि ये मत कर वो मत कर, और आपने आपके दादी को या नानी को पूछा रहेगा ये क्यों है, नानी ने क्या बताया, नानी ने आपको कहानी बताया ना कुछ की कुछ टेक्निकल बात बताई, रात को घर से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए जब आप गांव में रहते हैं, मैं खेती करता हूं, मैं किसान हूं, तो मुझे मालूम है रात को क्यों, देयर इज नो घोस्ट, भूत नहीं रहता है, बट रात को आपके घर से बाहर जब भी आप जंगल में तरफ जाते हो सांप रह सकता है, बिच्छू रह सकता है, तो उसको कहानी के द्वारा जब भी आपको नानी बताती हो तो एक्सपीरियंस ये रहता है कि बाहर नहीं जाना चाहिए या आराम से जाना चाहिए। सो जब भी आप 150 साल का एक्सपीरियंस कहानी के द्वारा बताते हो, स्टूडेंट्स या विद्यार्थी को बहुत अच्छी तरह से ध्यान आता है। और यही चीज़ आज की तारीख में जब भी आप ब्रांड या कोई एक वस्तु के बारे में कहानी के द्वारे में बताते हो तो सबको वो ब्रांड बहुत अच्छी तरह से याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल विक्स की एक डिजिटल फिल्म बहुत वायरल हो रही है, बाकी और सारी चीज़ें भी वायरल हो रही है, बट मुझे आज जैसे कि आज ब्रांड के बारे में एक स्टोरी के बारे में बताना है, तो विक्स का एक बहुत अच्छा डिजिटल एड बहुत वायरल है। सो वहाँ पे एक फादर और मदर ने एक बच्ची को एडॉप्ट किया है जो स्पेशल चाइल्ड है, जो उसको कुछ काफ़ी सारी कमियाँ थी। अब विक्स तुम्हारे सर्दी की गोली है, एडॉप्शन कंप्लीटली डिफरेंट है, बट मुझे देखो कैसा याद रहा है, मुझे बाकी कुछ याद नहीं रहा है, मुझे सिर्फ इतना रहा है वो विक्स वाली एड,
ब्रांड कनेक्ट,
ब्रांड कनेक्ट।
यस,
सो यदि आप आपके ब्रांड को, आप एक मेडिकल शॉप भी यदि चलाते रहेंगे गांव में, आप यदि आपके मेडिकल शॉप के बारे में अच्छी अच्छी कहानियां भी जोड़ के लोगों को बताएंगे, दवाइयां आपसे ही लेंगे, ये मेरा अनुभव है।
दैट्स रियली इम्पोर्टेंट एंड बहुत सहजता से आपने ये चीज़ बताई। अच्छा रुपेश, जब बात करते हैं स्टार्टअप्स की, लाइक जहाँ पे तो कैसा होता ना कि एक ब्रांड, एक कोई चीज़, एक प्रोडक्ट है वो एक लेवल पे आ गया, लाइक जैसे अभी आपने विक्स के बारे में बताया ना, विक्स एक लेवल पे आ गया है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे तो कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है।
बराबर।
फॉर एग्जांपल अगर कोई नई कंपनी है, उसका कुछ नया प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में कहानियाँ कैसे क्रिएट करें, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 150 साल का एक्सपीरियंस कैन बी टोल्ड इन 15 आवर्स, लेकिन जो 15 घंटे की चीज ही है या दो महीने 4 महीने पुरानी चीज ही है, उसके बारे में कैसे उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसके बारे में क्या कनेक्ट कर सकते हैं।
आपने अभी दो एग्जांपल्स मैं देना चाहूंगा जो अभी काफी बड़ी ब्रांड्स हो गई है। नंबर 1 इज ओयो होटल्स, नंबर 2 इज रेड बस। आपको मालूम है ये क्यों स्टार्ट हुए? यू हैव एनी आइडिया? नहीं, आई एम आस्किंग यू, डू यू हैव एनी
ओयो का? आई नो, बिकॉज यू नो दिस गाई वॉज इन हिज कॉलेज, ही वॉज अ ड्रॉप आउट एंड ही वॉज फाइंडिंग इट, उसको बाहर रहने में बहुत तकलीफ हो रही थी दिल्ली में जाके, तो उसको लगा कि यार क्यों नहीं हम यू नो इसको एक बिजनेस बनाए, बिकॉज ये नीड है।
सो दोस्तों कहानी चालू हो गई। और कुछ बताओ? रेड बस, तो ये आदमी मुझे जो मालूम है हैदराबाद के बस स्टॉप पे उसकी बस मिस हो गई, और उसे वो टाइम ध्यान आया कि 10-15 बसेस जा रही हैं जहाँ पे उसे जाना है, पर वो कैसे जा रही है उसका कुछ किसी
पता
को
पता नहीं,
पता नहीं है। सो उसने सिर्फ वो कहानियाँ जोड़ी और अपनी कहानी के साथ अपने इन्वेस्टर्स के साथ बात करने लगा। एक चीज़ ये दोनों में बहुत कॉमन है, नंबर 1 सच्चाई और ज़रूरत, सच्चाई जरूरत और गरज। एज अ स्टार्टअप ये 3 चीज आपने जोड़ी और इसकी कहानी अपनी कहानी करके बताई, या रादर अपनी कहानी ये कहानियों को जोड़ के बताई, आपका काम हो जाता है।
प्रोफेसर साहब, आज ये बताइए कि जब हम ब्रांड की बात करते हैं, ठीक है, लाइक लेट मी टेल यू, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा रुपेश के बारे में,
अगेन अ कहानी।
हाँ, कहानी। रुपेश जुड़े हैं लालबाग चा राजा से, जो कि शायद ही कोई ऐसा इस देश में होगा जो लालबाग चा राजा नहीं जानता है। अगर आप गणेश को जानते हैं, गणपति को जानते हैं, तो लालबाग का राजा भी जरूर जानते होंगे। रुपेश बहुत क्लोजली वहाँ से एसोसिएटेड हैं, और इन्होंने एक बुक बनाई थी, एक कॉफ़ी टेबल बुक बनाई थी, जिसमें लालबाग चा राजा की शुरू से आज तक की सारी जो यू नो कहानियां हैं,
लालबाग का राजा की कहानी,
लालबाग का राजा की कहानी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जब एक ब्रांड जब बनता होता है, ठीक है, लाइक कहीं ना कहीं से वो शुरू हुआ, ठीक है, आज इस लेवल तक पहुंच गया। आपने दो तीन बहुत अच्छी चीज़ें बताई, जैसे सच्चाई होनी चाहिए, ठीक है, कोई चीज़ अगर सच्ची होगी तो ही वो सस्टेन कर सकती है, तो इसके बारे में कुछ अगर हमें बताएंगे तो यू नो वी कैन प्रोबली लर्न फ्रॉम दैट।
लालबाग का राजा, मैं ये ऑफिशियली बहुत जवाबदारी के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि लोग क्या बातें करते हैं, और हर साल वो 10 दिन में ही वो बातें होते हैं, बाकी 355 दिन कोई उसके बारे में बात नहीं करता। विवेक जी, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग और अदर टू ऑल माई सब जो दर्शक हैं उनसे, कि आपको लालबाग का राजा मालूम है, आपको ये मालूम है कि वहाँ पे एक 35 लोगों की कमेटी है,
कितने लोगों की नहीं बट कमेटी होती है,
चलो लेवल टू, एक का भी नाम मालूम है
नहीं?
ठीक है, सच्चाई जो मैंने बात की इसी से पता चलता है कि आज भी वहां पे आप यदि जाते हो, जिस जिस से आप मिलोगे सब लोग सिर्फ लालबाग का राजा बोलेंगे, कोई बोलेगा नहीं हाँ मैं रुपेश सावंत, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूं, मैं विवेक, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूं। वहां ये जो कल्चर उन्होंने डेवलप किया है, इसके वजह से आज 85 ईयर्स सिंस 1934 ये गणपति का उत्सव मनाया जाता है। सो मैंने एक सच्चाई के बारे में बात की। अब लोग जब भी कोई ब्रांड के बारे में बात करते हैं, और ब्रांड एसोसिएशन मतलब आप, ओके, व्हाट इज ब्रांड, आप मतलब आप जब भी नहीं, आप जब भी किसी बात को ब्रांड बोलते हैं तो उसका एक सीधा साधा मेरा रिप्लाई ऐसा रहेगा कि ब्रांड मतलब कस्टमर एक्सपीरियंस, आपका उसके बारे में जो अनुभव है, आप उसके बारे में बात करते हो और वो कल्पना लेके लोग उसको और आगे लेके जाते हैं, वो सच्चाई, वो हार्डवर्क और वो कुशलता से उसको ब्रांड का अवतार मिलता है। अब लालबाग के राजा के ऊपर मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। 33 करोड़ देवताएं और देवताएं हैं, उसमें से सबसे प्रिय मेरा गणपति है। बचपन से मुझे आदत है कुछ भी मैं लिखूं, मेरे हाथ में जिस जब भी कलम आए तो पहले मैं श्री लिखता हूँ, आई डोंट नो व्हाई है, मतलब आई डोंट नो। अब मेरे सेकेंड स्टैंडर्ड से मैं मेरे गांव जाता हूँ गणपति के लिए। ऐसी क्या चीज है लालबाग के राजा में कि लोगों को वो मालूम? आपको ये मालूम है जब भी 10 दिन का उत्सव रहता है और यदि आप गणपति सीजन में किसी को भी पूछेंगे कि आपको कहाँ जाना है तो पहला उत्तर रहता है कि मुझे लालबाग जाना है, कोई बोलता नहीं है मुझे सिद्धिविनायक जाना है,
जबकि सेम गणपति
है। आप पहले दिन से लेके 10वें दिन तक सिद्धिविनायक जाओगे, आपको 5 मिनट में दर्शन होता है, 5 मिनट में, और वही 10 दिन में आप लालबाग जाओगे, आपको ये मंत्री का संदेशा लेके जाओगे, आप मुझे फोन करोगे, आप आई डोंट नो बहुत सारी चीजें करते हैं, बट लोगों को वहां जाना है। क्यों?
प्रोबेबली शायद उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया है ऐसा, या
देयर यू आर,
या कुछ रिलेट किया है उस चीज से।
सो आप जब भी एक ब्रांड के बारे में एक्सपीरियंस करते हो और उसे जब भी आप कहानी के द्वारे बात करते हो, तब जाके वो ब्रांड बनता है। अब मजे की बात यह है कि वो बेचारे 35 लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि इसको ब्रांड बोलते सब लोग मेरे हिसाब से 8वीं पास रहेंगे, बट आज की तारीख में मित्रों मैंने जो बुक बनाई है वो बुक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक मैनेजमेंट थ्योरी के लिए रेफर की जाती है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जब हार्वर्ड में या कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में ये बुक रेफर की जाती है तो सामने बैठे हुए सब लोग MBA A to Z जो कोई उनकी डिग्री है, और उनका जो कोच रहता है वो उसको बोलता है, अच्छा भैया लोग आपने ये सब किया है, अभी आपके कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, इसके लिए मुझे पैसे दे रहे हैं, तो मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ। भाई साहब केस स्टडी देते हैं, बोलते हैं कि आपके पास एक प्रोडक्ट लाइन है, आप वो प्रोडक्ट लाइन में आपका प्रोडक्ट आता है और उसका काम बनता है 15 सेकंड में। अब मुझे वो प्रोडक्ट वहाँ से 2 सेकंड में आउट चाहिए, कैसे करोगे? तो वो सब MBA वगैरह बैठे रहते हैं, ये क्या है आपको 15 सेकंड लगता है, वो काइज़ेन का बात करेगा, इसका बात करेगा। देन ही सेज ओके नाउ आई विल गिव यू अ लाइव एग्जांपल, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। बोलते हैं भाई साहब ऐसा, बोलते हैं कि मुझे लालबाग का राजा का गणपति में लाइन लगा के 40 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। अब मुझे वो 40 घंटा 6 घंटे में लाना है, अब कैसे लाओगे?
रुपेश सावंत को फोन करो।
अभी इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आज से 6 साल पहले वहां पे दिन के 8 लाख लोग आते थे, दिन के 8 लाख लोग आते थे। बंबई 57 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इफ यू सी आइलैंड सिटी, जो आपने हमारी 7 आइलैंड के, ये बंबई शहर है, वो 57 स्क्वायर किलोमीटर का है। वहां पे 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में रोज 7 से 8 लाख लोग आते थे। आपको मालूम है ये साल कितने लोग आए? दिन के 23 लाख लोग आए।
ओह वाह।
सो आप 23 लाख लोग इंटू 10 दिन, 2 करोड़ 30 लाख लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 57 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का जितना पॉपुलेशन है, 2 करोड़ तो पॉपुलेशन है मुंबई का, वो 10 दिन में वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में आए। तो आप सोचिए कि कितना मैनेजमेंट वहाँ पे होता है। वहाँ पे फायर मैनेजमेंट है, वहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, वहाँ पे 3 ICUs है, वहाँ पे लाइन मैनेजमेंट है, वहाँ पे आई मीन 23 लाख लोग आएंगे तो कहाँ तो जाएंगे ना, वो रेस्ट रूम्स चाहिए, तो वॉशरूम्स है, दे आर क्लीन, वहाँ पे चप्पल की वैले सर्विस है। सो ये सब चीज़ जब ये आप देखते हो तो उसमें उन्होंने बताया, भाई साहब बोलते हैं कि आप इसको, ये 23 लाख लोगों को दर्शन कैसे दोगे? ठीक है। सो वहां पे अभी एक लाइन रहती है जहां पे आपको उसके पैर के दर्शन, पैर छूना मिलता है गणपति का। तो उन्होंने बताया कि 10 या 8 साल पहले ये पैर छूने को हर आदमी को 15 सेकंड लगता था, क्योंकि आदमी पैर छूता था, देखता था अपना जो कुछ है वो बोल के, सो पीछे से आदमी का लाइन बढ़ते जाता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मैनेजमेंट की सिस्टम लगाया, कॉमन सेंस। अच्छा, सेकंड थिंग सर, आपको जिस भी ब्रांड को सिंप्लीफाई रखना है, एजेंसीज का मत सुनो, खुद का दिल का सुनो। एजेंसी तुम्हारा धंधा नहीं चला सकता है, तुम्हारा धंधा तुम चलाते हो, तुमको जो योग्य लगता है वही करो। मुझे लगता है कि मेरा ये धंधा मेरे से ऐसा बराबर चलेगा ना, दे विल, वो लोग सिर्फ मदद कर सकते हैं, साइन आप करते हो, पैसे आप भर रहे हो, तो आपका कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। यहाँ पे इन्होंने कॉमन सेंस यूज किया। वहां के एक टीम मेंबर ने देखा कि लोग हर जाति से आते हैं, हर उम्र के आते हैं, तो उनको नीचे बैठना पड़ता है, गणपति का पैर नीचे है, वो मथा टेकते हैं, नमस्ते करते हैं, तो एक आदमी को कम से कम 10 से 15 सेकंड लगता था, क्योंकि वो बैठेगा, होएगा, जाएगा, बीच में VIPs आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पंडाल ऊपर किया, सो आदमी खड़े खड़े दर्शन लेता था, वो सीधा 15 सेकंड या 10 सेकंड से 5 सेकंड पे आ गया।
सिंप्लिसिटी, आई लर्न
सिंप्लिसिटी। अब ये ना कोई मैनेजमेंट स्टूडेंट बता सका, ना हार्वर्ड वाला बता सका, ना काइज़न बता सका, दिस वॉज प्योर कॉमन सेंस। जब भी आप कभी भी अपनी स्टोरी बताओगे, और स्टोरी ही बतानी चाहिए, आप दिल से बात कीजिए और आपके कॉमन सेंस से बात कीजिए, और बाकायदा हिंदी में बात कीजिए। आपको मराठी आती है, उर्दू आती है, तमिल आती है, तेलुगु, वो जिसको सुनना है वो बराबर सुनेगा, बट आपकी स्टोरी में सच्चाई होनी चाहिए और कॉमन सेंस होना चाहिए।
ट्रू।
अब इसको आधा करने के लिए और क्या करेंगे,
अब और ऊपर तो नहीं ले जा सकते।
उन्होंने लाइन डिवाइड कर दी,
एक पर चू
दोनों चरणों के ऊपर। सो आपको जो 5 सेकंड लगते थे उधर, वो 2-2.5 सेकंड में होने लगा। इसीलिए आज 23 लाख लोग उधर दर्शन ले सकते हैं। ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है अगर आप सोचोगे नहीं, आप अगर लोगों के साथ बात नहीं करोगे, आप आपकी कहानियां शेयर नहीं करोगे। आपको बहुत सारे अनुभव लोगों से मिलेंगे जो आप आपके बिजनेस में यूज कर सकते हो। तो कहानियां सुनाइए और कहानियां सुनो।
कहानी सुनाना कहानी सुनना बहुत आसान है, नो लाइक हम लोग, हमारी शायद आदत है, कुछ लोग माहिर होते हैं कहानी सुनाने में भी, एंड
सच्ची कहानी सुनाने में माहिर नहीं रहते। सच्ची कहानी सच्चा आदमी ही सुना सकता है,
और वो दिल से आता है,
दिल से आता है।
लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो आप कितने भी सच्चे हो, आई डोंट नो, हालांकि मैं नहीं करता, बट लोग ऐसा बोलते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी से बिजनेस नहीं कर सकते भाई, आपको थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करना पड़ता है।
जैसे
जैसे कि अगर एक बनिया बोल दे कि मेरी जो मिठाई है वो कल की है, और हलवाई अगर बोल दे कि मेरी मिठाई जो है कल की है, तो लोग नहीं खरीदेंगे। आप जब आप उससे पूछेंगे कि भैया ताजी, हाँ हाँ एकदम, बस अभी 1 घंटे पहले आई है,
ठीक है, मेरा जवाब ये रहेगा, अगर मैं सच्चा हलवाई वाला रहूँगा तो 4 दिन में मुझे पता चलेगा कि शनिचर को 1 ही किलो मिठाई बिकती है, मैं आधा किलो ही मिठाई बनाऊंगा, मैं स्टॉक ही नहीं रखूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व। हम लोग ज्यादा की लालच में
Correct.
लोगों Greek. से झूठ बोलना आदत बना देते हैं। आपको क्या चाहिए वो देखिए, आपकी कहानी सच्ची रहेगी, आधा किलो मिठाई 10 मिनट में बिक जाएगी। फिर आधा किलो बनाइए ना, आप 3 राउंड में आधा आधा किलो बनाइए, आपकी 1.5 किलो वैसे ही बिकेंगी ना, आपको 1 किलो में से 200 ग्राम कल नहीं बेचनी पड़ेगी। ये मेरी समझ है, इसीलिए जो भी आदमी सच्चा रहता है वो कम काम करता है लेकिन
दिल से करता है,
ईमानदारी के साथ करता है। आप ऑनलाइन टिकट खरीदते हो, वो दिखाता है 1900 रुपए में फ्लाई फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा, जब आप बाय नाउ करते हो वो 400 रुपया कन्वीनियंस फी मार देता है। सच्चाई नहीं है सर इसमें, ये सब लादी हुई चीजें हैं हमारे ऊपर। मैं अभी एक सोशलिस्ट जैसे बात कर रहा हूं, बट ये कहानी है, और हम लोग ही अगर उसको खरीदने का बंद करेंगे तो ही ये लोग नहीं बेचेंगे ना। एंड देर इज अ बायर, देर विल ऑलवेज बी अ सेलर, एंड द वन हु शाउट्स द लाउडेस्ट इज द वन हु इज द बिगेस्ट चीट।
सो जैसे आपने अभी ये बताया कि सच्चाई ईमानदारी, ठीक है, आई मीन आई रिस्पेक्ट इट एंड एवरीबडी रिस्पेक्ट्स दैट, बट पता नहीं क्यों, लेकिन आज की जो जनरेशन है, यू नो, मैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम दैट सेम जनरेशन, बट मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग मुझे भी बोलते हैं कि भाई थोड़ा शाणा बन, ऐसा नहीं चलेगा, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल एंड समथिंग। लेकिन जब स्टोरी सुनाने की बातें होती हैं, या जब हमें ब्रांड बनाना है, जब हमें मतलब सुनना तो एक चीज़ है एंड दूसरा सुनाना एक अलग चीज़ है, तो क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। एक जैसे सच्चाई के बारे में आपने बताया एंड बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया कि हिडन कॉस्ट जो लोग लगा के रखते हैं, ठीक है, कि स्टार लगा हुआ है नीचे, कंडीशन सप्लाई, ठीक है, एंड देर आर आज मार्केटर्स हैं जो बोलते हैं नो कंडीशन सप्लाई, मेरा ये 5,000 का कॉस्ट है और उसमें सब कुछ इंक्लूसिव है, पीपल बाय बिकॉज उनको लगता है कि ये सच बोल रहा है। और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जब हम स्टोरी टेलिंग कर रहे हो?
सबसे पहली और अहम बात यह रहेगी कि आप जब भी स्टोरी टेलिंग कर रहे हो अपनी स्टोरी बताओ, और अगर इसमें से आपको बिजनेस करना है तो वो स्टोरी सामने वाले के लिए कितनी अच्छी है इसका ध्यान रख के उसके लिए प्रोडक्ट दो। हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी बोलते जाते सामने वाले को उसकी ज़रूरत है नहीं है वो हम नहीं देखते हैं। मुझे आज इतने पैसे कमाने हैं, मैंने मेरी सच्चाई बोल दी, अभी उसको वो काम में आवे ना आवे वो उसका प्रॉब्लम है। ऐसा मत करो।
क्या कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे
ये बिग बिलियन सेल और क्या, कौन सा बड़ा एग्जाम्पल दूँ आपको? मैं तो वेबसाइट, क्यों मेरे पास एक मोबाइल है। आज की मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मेरी बीवी का मोबाइल कल गुम हो गया और वो ऑफिस में था, उसे भी मालूम था, मुझे भी मालूम था। वो मोबाइल ढूंढने के लिए रात को 10 बजे हम लोग गाड़ी में बैठे, गाड़ी में क्या बात कर रहे हैं, अरे कल ना वो बिग बिलियन सेल है तो अगर वो मोबाइल गुम हो गया रहेगा ना तो हम लोग उसके ऊपर से ले लेंगे। सो यू अंडरस्टैंड हम लोग उसकी स्टोरी में कितने आ गए।
करेक्ट।
और फिर मैं उसके साथ झगड़ा कर रहा हूँ, अरे मेरा मोबाइल तो मैंने सेकंड हैंड लिया है, मैंने तो 14,000 में लिया है, वो 5 दिन, नहीं नहीं मुझे सेकंड हैंड नहीं चाहिए। सो आप ये समझिए कि ये जितने बड़े कंपनियां हैं, एक तो सच नहीं, आई मीन
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट
और विदाउट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक तो वो सच बात नहीं करते, दूसरा आपको जो नहीं चाहिए आपको बेचते हैं, आपको खरीदने लगाते हैं। 20 साल पहले का एड देखिए आप टूथपेस्ट का और आज के एड्स देखिए, बिकॉज हम लोग ने तो वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। वो टाइम की उनकी कहानी क्या थी, आपको नमक बहुत बुरा है, आपका ऐसा हो जाएगा, वो कार्सिनोजेनिक है, वगैरह वगैरह वगैरह। आज सडनली पतंजलि आ गया तो अभी इनको नमक भी चाहिए, इनको आयुर्वेदा भी चाहिए, हम पागल है क्या? तो आपकी स्टोरी में यदि सच्चाई है और आप वो ही स्टोरी 20 साल से ईमानदारी से बोल रहे हो और आप सेल्स फोर्स नहीं कर रहे हो, आपकी जीत होगी।
आपने बहुत अच्छी ये एक स्टोरी बताई लालबाग का राजा की, इसके बारे में ऐसा क्या हुआ कि एक हार्वर्ड का केस स्टडी बन गया?
आप एडवर्टाइजिंग के फील्ड से हैं, क्या है एडवर्टाइजिंग?
रीचिंग आउट टू द पीपल एंड स्टोरी टेलिंग बेसिकली।
आज की एडवर्टाइजिंग में क्या हो रहा है?
लाई टेलिंग,
बट टेलिंग इज हैपनिंग,
टेलिंग इज हैपनिंग।
यही चीज मैं जो बोल रहा हूँ मैं वापस दोहराता हूँ कि लालबाग में 1934 से सच बोला जा रहा है, वो ही स्टोरी बताई जा रही है, और उनकी आइडियोलॉजी या उसकी जो विचार श्रेणी है वो वही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगेन अ स्टोरी। 1932 में जब ये ब्रिटिश राज था, वहाँ पे मार्केट था, वो मार्केट को उन्होंने बंद करवाया ब्रिटिशर्स फॉर वॉट एवर रीजन। तो वहाँ पे जितने व्यापारी थे वो मार्केट में, उन्होंने गणपति से प्रार्थना की कि यदि हमको एक हमारी खुद की मार्केट की जगह मिलेंगे तो हम आपकी प्रतिष्ठा वहां करेंगे और आपकी हर साल पूजा करेंगे गणपति में।
ओके।
1934 में मार्केट की जगह उनको मिली। अगेन आई डोंट नो वेदर आई शुड कोट इट ऑन नॉट, द पर्सन जिसने वो जगह डोनेट की वो हिंदू नहीं था। सो जहां पे आज गणपति बैठता है वो जगह हिंदू की नहीं थी। सो ये गणपति और रिलीजन के लिए नहीं है, ये कुछ और थॉट प्रोसेस है। सो अब ये क्या थॉट प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे मार्केट लगा, काम चालू हुआ, तो उन्होंने गणपति की स्थापना की। अब आपके घर में भी गणपति आता है, आपके घर में भी आता है, मेरे पास गांव में गणपति आता है, हम लोगों को उत्साह से घर पे बुलाते हैं, उनको चाय पानी देते हैं, कुछ मोदक लाडू देते हैं। कोई भला आदमी आता है, बोलता है वाह 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 बहुत अच्छे आपके डेकोरेशन वगैरह हो गए, और वहाँ पे एक वो 100 रुपये की दक्षिणा दे जाता है। अब वो आदमी 100 रुपये क्यों रखता है वो उसे मालूम, मे बी उसे अच्छा लगा हो या उसने कुछ और थॉट प्रोसेस से रखा हो, बट आपकी ये जवाबदारी हो जाती है कि अभी वो 100 रुपये आपका तो नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे?
ऐसे किसी नीडी लोगों को डोनेट करेंगे या किसी के लिए कुछ करेंगे।
दिस इज द स्टोरी। 34 से जब से लालबाग का राज्य की स्थापना हुई है, लोग जहां वहां पे उनकी जो कमेटी है उनका थॉट प्रोसेस यही है कि ये मेरा गणपति है, आपको सबको दर्शन मिलेगा, यू आर मोस्ट वेलकम। और जब भी कोई आदमी वहां पे श्रद्धा से जाता है, उनका मार्केट बना तो उन्होंने बोला कि चलो मेरे मन में भी कुछ मन्नत है, मैं मांगता हूँ उनकी मन्नत पूरी, तो उसने वहाँ प्यार से 100 रुपया रखता है, कोई 1000 रुपया रखता है, कोई 10000 रुपया रखता है, कोई 10 लाख रखता है, कोई 1 करोड़ रखता है। आई एम नॉट जोकिंग। मंडल की एक विचार ऐसी है कि ये पैसा मेरा नहीं है लेकिन ये पैसे की जवाबदारी मेरी है। किसी ने वहाँ पर श्रद्धा से वो पैसे रखे हैं। आज की तारीख में भी मित्रों जो 100 रुपये वहाँ पे कलेक्ट होते हैं, हर 100 रुपया जो कलेक्ट है तो उसमें से 15 रुपये में ही गणपति का सेलिब्रेशन होता है, बाकी 85 रुपये का वहाँ पे डोनेशंस होता है,
जन कल्याण
का काम होता है। और इसी वजह से उनकी ये जो 85 साल की जो स्टोरी है वो यही है कि ये पैसा हमारा नहीं है, ये हमारे पास ट्रस्ट है कि ये आपने हमको ट्रस्ट करके ये पैसा रखा है, हम ये पब्लिक से आया हुआ पैसा वापस पब्लिक को ही देंगे। आप उनकी वेबसाइट चेक कीजिए, उनका डायलिसिस सेंटर है, इट्स अ 24 बेडेड डायलिसिस सेंटर, 24 आवर्स फ्री। आपका पेशेंट वहाँ जाएगा, वो वहाँ पे राजीव गांधी योजना में 100 रुपया भरता है, उसका डायलिसिस होता है, बाय द टाइम उसके रिलेटिव उसको वहाँ पे चाय पानी बिस्किट नाश्ता पोहा जो है चलता रहता है, और जब वो पेशेंट वापस जाता है, वो पेशेंट को पूछा जाता है या फिर उसका रिकॉर्ड रहता है कि आप कहाँ से आए, आप कांजूरमार्ग से आए, ये लो 300 रुपया, आप टैक्सी से जाओ। ऐसा कहाँ पर भी नहीं होता।
वाओ, दैट्स ऑसम।
तो आप ये स्टोरी को समझिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि उनकी स्टोरी 1934 से वही है, उनकी थॉट प्रोसेस ही वही है कि मुझे पब्लिक के लिए काम करना है, उसके लिए अगर मुझे टाइम है तो मैं ये करूँगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। और देखिए पैसा आ रहा है, क्योंकि उनकी स्टोरी में सच्चाई है, उनकी स्टोरी में दम है, उनका काम है वहाँ पे। तो एज अ स्टार्टअप आप इसको फॉलो कीजिए, मेहनत है, मेहनत है, आपको शॉर्टकट करना है तो फिर बाकी अभी सब चल रहा है वैसा करो। आपको मेहनत करके आपका वजूद बनाना है और आपके स्वप्न को रंग रूप देना है, तो यही एक मार्ग है।
इट्स वेरी बहुत सही जो आपने ज्ञान दिया यहाँ पे। एक चीज़ मुझे और आपसे समझनी है, लाइक यू नो, जैसे कि आपने बताया अभी तक हमने जितनी भी स्टोरीज सुनी, ज़्यादातर स्टोरीज में ये है कि किसी ना किसी के लिए, किसी पर्सन ने, किसी बंदे ने किसी और की भलाई के लिए कुछ ना कुछ त्याग किया है या कुछ ना कुछ दिया है। जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, लाइक एक बहुत बड़ी यू नो लाइक कम्युनिटी है जिसका ये सोचना है अरे अभी तो हमारे पास खुद नहीं है, हम किसी को क्या देंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप?
आपका दिमाग ही आपका कैपिटल है, आपका दिमाग ही आपकी पूंजी है। आप आपके दिमाग के ऊपर विश्वास रखिए और आपकी कहानी के ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए, पैसा आ जाएगा। आप पैसे पे ध्यान दोगे, पैसा कभी भी नहीं आएगा। पैसा अपने, इट्स अ वेरी रॉन्ग एग्जांपल, पैसा अपने पेट पपी के जैसा रहता है। आप उसको जितना पीछे पीछे भागोगे वो पपी को लगेगा ये मेरे साथ मस्ती कर रहा है और आगे आगे जाएगा, लेकिन आप उससे दूर भागोगे उसको इनसिक्योर होगा, वो आपके पीछे पीछे आएगा। सो आप आपकी स्टोरी पे बिलीफ रखिए। हाँ, व्यवहार व्यवहार के जैसे कीजिए
और व्यापार व्यापार
व्यापार के जैसा होना चाहिए, लेकिन आपकी कहानी में दम होना चाहिए और आप खुद पहला वो कहानी में बिलीव कीजिए। आपको 10,000 लोग आएंगे बोलने को कि तू पागल है। जिस दिन आपको ये 100-200 लोग बोलेंगे आप पागल है ना, मतलब आप बराबर ट्रैक पे
सही जा रहे हैं,
क्योंकि पागल लोग ही सक्सेसफुल होते हैं।
करेक्ट,
क्योंकि उसे सक्सेस नहीं चाहिए रहते, उसको अपनी स्टोरी का विश्वास दिलाने के लिए कुछ विश्व बनाने की जो चाहत है वो चाहिए।
ग्रेट, आई थिंक इट हैड बीन एक बहुत अच्छा समय आपके साथ रहा एंड बहुत कुछ सीखने को मिला, यहाँ तक कि हमने ये भी सीखा आज कि कैसे एक ऑलरेडी एक पहले से जो कि एक ब्रांड है गणपति, उसको सुपर ब्रांड कैसे बनाया गया या बन गया,
जो उनको मालूम ही नहीं है,
जो उनको पता भी नहीं कि वो इज बीइंग मेड सुपर ब्रांड। गुड, अगर मैं इस सेशन को समराइज करना चाहूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, छोटा प्रोडक्ट हो या बड़ा प्रोडक्ट हो, सबको कहीं ना कहीं अपने ऑडियंसेस तक, अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए एक कहानी की जरूरत होती है।
परफेक्ट।
और क्योंकि जब आप कहानी सुनाते हो तो आप इमोशनली अटैच होते हो अपने ऑडियंसेस से, तो वहाँ पे हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारी कहानी सच्ची हो, सो दैट वो कहानी सामने वाले को स्ट्राइक होनी चाहिए और लंबे समय तक रहनी चाहिए। और अगर सच्ची होगी तभी वो ज़्यादा दिन तक टिकेगी, अदरवाइज सरकार की तरह हो जाएगी, कोई भी टंगड़ी मारेगा और गिर जाएगी।
दूसरी बात, आज जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, उसके आजू बाजू में अगल बगल में 10,000 लोग सिर्फ झूठी बोल रहे हैं, आपकी कहानी वो डेफिनेटली वेरीफाई करेगा, और जिस दिन उसको ध्यान आएगा कि ये सच बोल रहा है, वो आपका जिंदगी भर का क्लाइंट होएगा। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है।
एब्सोल्युटली।
सो आपकी कहानी में विश्वास रखिए, कहानी जोर शोर से बताइए और खुले दिल से बताइए, और चाय वाला, आई मीन नॉट चाय वाला, बट आप
इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल,
वेरी कंट्रोवर्शियल, आप ट्रेन में बैठे हो या प्लेन में बैठे हो, कहानी सुनाइए, कहानी सुनाइए, कहानी सुनाइए, कहानी सुनाइए, सुनने वाले आपको बहुत मिलेंगे।
एब्सोल्युटली, एंड स्पेशली जब आप एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि आपकी वो नीड है आपको एक सही कहानी सही माध्यम से और सही लोगों तक सही परिस्थितियों में सुनानी है, तो ही आप बड़े बन पाएंगे। एंड रिमेंबर, जैसे ही जैसा कि रुपेश ने बताया कि आपको इट्स नॉट लाइक आप जब बहुत बड़े हो जाएंगे तो ही यू कैन गिव बैक, आप अभी भी कर सकते हैं, आपके पास दिमाग है, आज आप एंटरप्रेन्योर बने हैं या बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास दिमाग है, आप जितना लोगों के साथ में शेयर करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। बिकॉज प्रकृति का एक नियम है, आप जो भी उससे देते हो ना वो 10 गुना बन के आपके पास वापस आता है,
अच्छा बुरा दोनों।
आप झूठ देंगे झूठ आएगा, सच देंगे सच आएगा, अच्छा देंगे अच्छा आएगा, बुरा देंगे बुरा आएगा। थैंक यू सो मच रुपेश फॉर बीइंग हियर, एंड इट हैड बीन रियली प्लेजर
हैविंग यू। माय प्लेजर, इट इज माय प्लेजर, थैंक यू।